भगवान के जन्म के हेतु को इस बात को जानने वाला मुक्त हो जाता है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, किंतु भगवान का कर्म जो है वो जुद्ध है, इसके जानने से कैसे मुक्ति हो जाती है, तो वो आगे यहाँ तक तो जन्म की बात आई। यहाँ से लेकर के पांच के सिरों से लेकर के चौथे हजार के पांच के सिरों से लेकर के आठ के सिरों तक और नौवें के बीच के माँ उसकी महिमा बतलाई। अब आगे भी चलो दसवें के बीच के माँ, तो दसवें कहते हैं गीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपासिता बहुओ ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। गीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध जिनके बीत गए हैं, जो राग भय और क्रोध से जो रहित हैं और मन मया और माम उपासिता और मेरे में जो तन्मय हो गए हैं और मेरी जो शरण हो चुके मेरी मेरे कोई आश्रय करने वाले माम उपासिता और बहु ज्ञान तपसा ज्ञान रूपी तप के द्वारा बहुत से ऊता मद भाव मांगता पवित्र हुए मेरे भाव को प्राप्त हो चुके। इस प्रकार के ज्ञान रूपी तप से कोई आपने प्राप्त हो जाता है, ये कानून कोई आज की नहीं, बहुत से प्राप्त हो चुके, बहुत से इस प्रकार के ज्ञान रूपी तप के द्वारा और प्राप्त हो चुके। वे कैसे कि एक प्रकार से थी ज्ञान रूपी तप तो उन्होंने होया द्वार और वे उनका लक्षण की बीत राग भय क्रोध राग भय और क्रोध जिनके बीत गए, ऐसे महात्मा जन बहुत से जो है इस बात के तत्व को जान करके और ऐसे मुक्त हो चुके। अब आगे ने कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, मेरी ये कानून है कि जो जिस प्रकार से जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। ये यथा यथा प्रकार अर्थ में जिस प्रकार से जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। पर कोई कोई टीकाकार यथा शब्द का प्रकार अर्थ नहीं लेकर के भाव अर्थ लिया, जो जिस भाव से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी भाव से भजता हूँ। और कोई कहता है कि जो जिस उद्देश्य से जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुझको भजते हैं उनके उस उद्देश्य की मैं सिद्धि कर देता हूँ। पर साफ जो अर्थ है प्रकार, तो कहते हैं कि हम भगवान का ध्यान करें तो क्या भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं? बोले भगवान आपका ध्यान करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नैने द्वेषेषु न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। गीता अध्याय 9 श्लोक 29 में मैं सब भूतों के मां सम हूं, न तो कोई मेरे प्रिय न कोई मेरे अप्रिय है, किंतु जो भक्ति से भूत को जो अपने भजते हैं वे मेरे हृदय में और उनके हृदय के माँ मैं हूँ। तो उनके माँ विशेषता से भगवान बता, जैसे सूर्य भगवान सब जगह के माँ समान भाव से हैं, किंतु काश के माँ सूर्य का दर्शन नहीं होता और दर्पण में उसका प्रतिदिन दिखता है, तो जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसके हृदय के बीच के माँ भगवान प्रत्यक्ष प्रगट होते हैं जैसे आईने में और काश में नहीं दिखते। और वो जो आईना होता है एक सूर्यमुखी आईना, वो सूर्य की किरणों के रश्मियों की किरणों के प्रभाव को लेकर के कपड़ा जी को भी जला देता है। तो जिस भक्त का हृदय जो कि शुद्ध होता है और भगवान की उसमें भक्ति होती है, तो भगवान के भाव को लेकर के और संसार के बीच में दूसरे मनुष्यों का भी उद्धार कर देता है। तो ये उसमें विशेषता दिखलाई। अब फिर अपने प्रकरण पर मैं आ जाता हूँ कि ये यथा मान प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामहम्, कि जिस प्रकार से थी जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। और इसके लिए समझो कि ज्वलंत उदाहरण भी है, महाभारत के शांति पर्व के आरंभ में देखो कि भगवान समझो कि आपने युधिष्ठिर आदि को समझाने के लिए गए थे, सब कौरव जब मारे गए तो उस वक्त में राजा युधिष्ठिर राज के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं राज नहीं भोगूंगा, भीमसेन को राजा बना करके तुम अपना काम चला लो और मैं वन में जाकर के घोर तपस्या करके अपना जीवन तप में बिताऊंगा, क्योंकि बहुत ही लाखों क्षत्रियों की स्त्रियां ये रात और दिन रो रही है, तो ऐसी परिस्थिति के मां मैं राज तो नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने बहुत से आकर के समझाया, किंतु किसी की बात युधिष्ठिर नहीं मानी। वेदव्यास जी ने भी समझाया, बहुतों ने समझाया, तो उस वक्त में भगवान भी वहां थे। उस समय में राजा युधिष्ठिर वहां आए और युधिष्ठिर बैठे रहे, फिर भगवान ध्यान से उठे तो राजा युधिष्ठिर ने समझो कि विनय पूर्वक पूछा कि महाराज जो गुप्त बात नहीं हो तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। तो उस वक्त में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये उत्तर दिया है कि भीष्म पितामह सत्सज्जा पर शयन करते हुए मेरा ध्यान करते हैं और मैं भीष्म पितामह का ध्यान करता हूँ। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये सामान पर बदलते हम फिर कि मम वर्तमान वर्तम से मनुष्य पार्थ सर्वश है। हे पार्थ, सब जो मनुष्य है जो मेरे बर्ताव के अनुसार तो बर्ताव करते हैं, मैं जिस मार्ग से चलता हूँ उसी मार्ग से सब चलते हैं, क्योंकि संसार में मैं श्रेष्ठ पुरुष के नाम से मान्य हूँ, इस वास्ते सब कोई मेरा ही अनुकरण करते हैं। तो लोगों को ये सिखलाना है कि अपने साथ के बीच के मां जो उत्तम व्यवहार करे तो उसके साथ में उत्तम व्यवहार करना चाहिए। मैं खुद यदि उत्तम व्यवहार नहीं करूंगा तो लोग भी कैसे उत्तम व्यवहार करेंगे। तो भगवान का अनुकरण जो है हम लोगों को करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मुझको भजते हैं उनको मैं भजता हूँ, तो ये बात हम लोगों को शिक्षा देते हैं। तो हम भगवान का अनुकरण करें, उनके अनुसार चलें, तो हमारे कल्याण में कोई शंका की बात नहीं। इतना ही नहीं, आगे जाकर के फिर भगवान कहते हैं कि चातुर वर्णिंग मया सृष्टिंग गुण कर्म करता और मति मन विध करता और मध्यम न मन कर्माणि पंक्ति न मे कर्म फले प्रिया इति मान यो भी जानाती कर्म भी न सवद्यते। ये गीता अध्याय 4 के 13 और 14 के श्लोक हैं। इनका भाव यह है कि चार प्रकार के वर्ण, वर्ण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उपलक्ष्य रख करके सारी दुनिया उनको एक प्रकार से ये बात कही है। सारी दुनिया के लिए मतलब यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार जो वर्ण है, और सारी दुनिया समझो कि चार योनियों में आ जाती है। चार प्रकार की योनि की जो खैन है, वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, और वो भी एक आकृति होने से चार प्रकार के वर्ण ही है। तो ये चार प्रकार के जो वर्ण कौन की वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, इन चारों प्रकार के वर्णों को पूर्व के उनके जैसे कर्म और जैसे गुण थे उनके अनुसार ही भगवान कहते हैं मैंने उन सब की रचना की। इसलिए उनका कर्ता हुआ भी बुद्ध को अकर्ता ही समझना चाहिए। चातुर वर्णिंग मया सृष्टिंग चारों प्रकार के वर्ण स्वेदित अंडज उद्भिज जरायुज मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। चातुर वर्णिंग मया सृष्टिंग गुण कर्म विभाग से गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार जिनके जैसे गुण और कर्म थे उनके अनुसार मैंने उनकी रचना की। तस्य कर्ता मति मान उनके कर्ता होते हुए भी बुद्ध को अकर्ता अभ्यम विधि अकर्ता और समझो की अविनाशी जान मैं अविनाशी हूँ और अकर्ता हूँ ऐसा तू है तो जान विधि माने जान। तो बात क्या, बात ये कि वास्तव में इस संसार की रचना करने वाला होकर के भी पक्षपात रहित होने के कारण से उनके गुण और कर्मों के अनुसार न्यायकर्ता होने के कारण से उसका कर्ता हुआ ही वास्तव के मां मैं अकर्ता हूँ, इसलिए मुझको तू अकर्ता जान। और कि न मान कर्मान लिम पंक्ति न मैं कर्म फले स्प्रिया इसी मान योग ज्ञान आती और कर्म भी न सबद्धते। वे कर्म जो है मुझको लिपायमान नहीं कर सकते, या यूं समझो कि भार अर्थात कि कर्मों करके के मैं लिपायमान नहीं होता। क्यों नहीं होते, न नमन कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेष्प्रिया, कर्म के फल की मुझ को परवाह नहीं है, इसलिए एक प्रकार से कर्मों के द्वारा मैं नहीं बनता। इति मान यो अभी जाना थी, इस प्रकार से कि जो मुझको अच्छी तरह से समझता है, इति मान इस प्रकार से मुझको अभी जाना थी, जो अच्छी प्रकार से जानता है वह भी कर्मों के द्वारा नहीं बनता, वह भी कर्मों के द्वारा नहीं बनता तो मुक्त हो जाता है। तो ये कर्मों का तत्व बतलाया, कर्मों का हैस्य बतलाया। क्या हैस्य बतलाया? कि जो पुरुष कर्म तो करता है किंतु कर करके उसमें कर्ता पने का अभिमान नहीं है तो वो कर्मों के द्वारा नहीं बनता, और कर्म करके उसके फल की इच्छा उसको नहीं है तो कर्मों के द्वारा नहीं बनता। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 17 में यस्य नमन कृतो भाव हर बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सिंहान लोकं न हन्ति न निबध्यते, यस्य नमन कृतो भाव जिसके भीतर में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि स्वार्थ करके के लिपायमान नहीं होती, ऐसा पुरुष सब दुनिया को मार करके भी न तो वास्तव में मारता है और न उस पाप करके बंधता है। तो ये उसका तत्व जानना। और कहते हैं इस प्रकार के तत्वों को जान करके फिर आगे आपको कह रहे हैं कि एवं ज्ञातवा कृतं कर्म पूर्वे रति मुमुक्षुहि कुरु कर्म तस्मात्म पूर्वे पूर्व करण कृतं। एवं ज्ञातवा इस प्रकार से जान कर करके पूर्व के बीच के न मुमुक्षुओं के द्वारा कर्म तो किए गए हैं। इस प्रकार से समझ कर करके कि कर्मों के भीतर में कर्तापने का अभिमान नहीं रहने से और कर्मों के फल की इच्छा नहीं रहने से कर्म उसको नहीं बांध सकते। तो इस प्रकार से पूर्व के जमाने में जो मुमुक्षु हो चुके हैं उन्होंने इस प्रकार का तत्व है समझ कर करके और कर्म किए हैं। अर्जुन तू कहते हैं कुरु कर्मयो तस्मात्म, इसलिए तुम जो है इस प्रकार से जान कर करके कर्म कर। कैसे? कि ये कहते हैं कि पूर्व में होने वाले जैसे पूर्व में कर्म किए हैं, पूर्व में होने वाले पुरुषों के द्वारा जैसे पूर्व में कर्म हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कर्म किए हैं उनके द्वारा कर्म किए गए हैं, उसी प्रकार से तू भी एक प्रकार से इस बात को समझ कर्म कर, तो फिर तेरे को भी ये तो कर्म नहीं बांधेंगे। तो कर्मों के मां तत्व रहस्य ये बतलाया कि कर्मों के बीच मां जो कर्तापने का अभिमान नहीं होने से कर्म नहीं बांधते, उसके कर्म कर्म ही नहीं, और कर्मों के मां जब आसक्ति नहीं रहती और फल की इच्छा नहीं रहती तो भी कर्म उसको नहीं बांधते। कर्तुआ कर्म फलासंगम निज त्रिवत निराश्रिय कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति स। इसी ध्यान के मां चौथी ध्यान के 20 के श्लोक के मां आगे भगवान है तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि कर्तुआ कर्म फलासंगम कर्मों में फल और आसक्ति को त्याग करके और आश्रय रहित होकर के उसके आश्रय से रहित होकर के और जो हर वक्त उस परमात्मा के स्वरूप में तृप्त है ऐसा पुरुष कर्म कर करके भी कुछ भी सुन नहीं करता। त्यक्त्वा कर्म फला संयम नित्रवत निराक्रिय कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी कर्म के मां प्रवृत्त हुआ भी नैव किंचित करोति स वह पुरुष किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता है। तो इसलिए भगवान का ये कहना है कि मैं कर्मों का करता हुआ भी अकर्ता हूँ, कर्म कर करके भी कुछ नहीं करता ऐसा तुम समझो। इस प्रकार की समझ का यह फल है कि तुम भी ऐसे ही करो। तो जो मनुष्य इस तत्व को समझ करके कर्मों का आचरण करता है वो कर्मों के द्वारा नहीं बंधता। फिर राजा ने कहते हैं कि किम कर्म किम कर्मेति और कवियो कर्मोहिता सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से सुवाद। कि कर्म तो क्या है, किम कर्म और किम कर्मेति वो अकर्म क्या है, इसके मां कभी लोग भी मोहित हो जाते हैं, माने विद्वान ज्ञानी भी इसके बीच के मां समझो कि कर्मों की गति सूक्ष्म है। कर्म माने एक प्रकार से शास्त्र विहित कर्म, उनकी कर्म संज्ञा है, शास्त्र भी कर्म कहो चाहे धर्म कहो, तो किम कर्म किम कर्मे थी। कवियों के अत्रोहिता, कवि जो आपने विवेकी, कवि जो एक प्रकार से पंडित ज्वान, ये भी इस विषय के मां मोहित हो जाते हैं। वे भी एक निर्णय नहीं कर सकते कि इसका मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। तथे कर्म प्रवक्ष्यामी यज्ञात्वा मोक्ष से सुभाव तथे, वे मैं तेरे प्रति करुणा से कहूंगा जिसको तू जान करके और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा संसार से। वे कर्मों का तत्व मैं तेरे लिए कहूंगा ये प्रतिज्ञा करके फिर भगवान कर्मों का तत्व बतलाते हैं कि जिसके जानने का फल मुक्ति है, जिसके जानने का फल मुक्ति है। तो तत्व से जानना वास्तव में यही है कि उसके भीतर के वहां जो अपने कर्ता अपने का जो अभिमान नहीं, हंता ममता नहीं, तो उसे मुक्त हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। ये बात यही जीवन में कही विहार कामान यह सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रिय निर्मम निरहंकार शांति मधिगच्छति। गीता अध्याय दो शिरो की कहते में अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं, अर्जुन विहार कामान यह सर्वान अपमान शक्ति निष्प्रिय है, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके हमता और ममता से रहित होकर के और सत्प्रिया से रहित होकर के जो संसार में विचरता है वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति को मोक्ष को एक ही चीज है। तो ये कहकर के अब ये समझना चाहिए कि किम कर्म किम कर्मे थी, कर्म तो क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का मतलब है, कर्म का मतलब है शास्त्र भी जो क्रिया उसका नाम है कर्म, और अकर्म का मतलब है कि कर्म का अभाव, कर्म का अभाव है वो अकर्म है। तो उनका हैस मैं तुम्हारे को बतलाऊंगा जिसके जानने से तुम मुक्त हो जाएगा। तो उसका हैस तुमको जानना चाहिए, कर्मण यदि बोध्यदम, बोध्यदम से भी कर्मण है और अकर्म से बोध्यदम अर्गणा कर्मणों गति। फिर कहते हैं कर्म को भी जानना चाहिए और कर्म भी ऐसो बोध है और अकर्म को भी जानना चाहिए, वो अकर्म भी ऐसो बोध है और विकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म अकर्म विकर्म ये जानना चाहिए इसको, क्योंकि कर्म की जो गति है वो गहन है, कर्म की गति गहन है तो वो जानना चाहिए। मैं उसे उनको तेरे प्रति कहता हूँ कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत और दै कर्मणी च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्य सु युक्त कृष्ण कर्म कृते। कहते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत और अकर्मणी च कर्म यह और स बुद्धिमान मनुष्य सु युक्त कृष्ण कर्म कृते। तो कहते हैं कि अर्जुन कर्म के बीच के मां जो अकर्म को और अकर्म के मां जो कर्म को जो पश्चिम देखता है अनुभव करता है वह मनुष्यों के बीच के मां बुद्धिमान है यानी ज्ञानवान है और वह युक्त मान है योगी है और वह संपूर्ण कर्म के करने वाला है। वास्तव में करना उसका ही प्रशंसा के लायक है कि कर्म करके बंधता नहीं। जैसे आपने कमल का पत्ता जल में रहकर के भी जल से लिपायमान नहीं होता, इस प्रकार से कर्मों को करकर के भी कर्मों से नहीं बंधता है, उसी की विशेषता है। तो ये जो श्लोक है शब्दार्थ इसका क्या है, किंतु इसका थोड़ा विस्तार है तो थोड़ा विस्तार से करा देता हूं। कर्मण्य कर्म यह पश्य दह कर्मी च कर्मी है स बुद्धिमान मनुष्य युक्त है कृष्ण कर्म कृत। तो शब्दों का अर्थ तो इतना ही कि जो मनुष्य कर्म के बीच में अकर्म को और अकर्म के बीच में कर्म को देखता है वह पुरुष मनुष्यों के बीच के मां बुद्धिमान ज्ञानवान है और युक्त माने योगी है और सब कर्मों के करने वाला है। ये बड़ा हैस्य श्लोक है। अब एक टीकाकार या कोई सज्जन इसका अर्थ करता है, ये शास्त्रार्थ एक भाई कहता है कि कर्म का मतलब है नित कर्म, शास्त्रविद कर्म जो मनुष्य के वास्ते करना ही चाहिए, जैसे संध्या है, गायत्री है, होम है, नित कर्म करना ही चाहिए। उसके उसका करना तो कर्तव्य है और उसका कोई फल नहीं, और न करने से उसको प्रत्यवाय दोष लगता है, न करने से उसके वहां प्रत्यवाय दोष है। तो इससे ये बात बताई कि कर्म के करने पर उसको कुछ नहीं मिलता और कर्म के न करने पर अरे उसको पाप लगता है। कि जैसे एक राजा है और राज आज्ञा है कि राजा के लड़का पैदा हुआ है इसलिए शहर को साफ करो और शहर को सजाओ और सबको उत्सव ऐसा मनाओ, जो उत्सव नहीं मनाएगा उसको 6 महीना की जेल होगी और जो उत्सव मनाएगा उसको कुछ मिलेगा नहीं, राज आज्ञा है। तो समझा कि जो उत्सव मनाता है वो उत्सव मनाना कर्म करना हुआ और उसका जो फल है उसमें अभाव है, वो अकर्म है। वो अकर्म जो है कर्म का अभाव है, कर्म का अभाव के कर्म का जो फल नहीं मिले हुए कर्म का फल का नहीं मिलना ही आपने अकर्म है। कर्म के करने पर भी जो ये समझता है कि ये राजा की आज्ञा के पालने से किसी मिलेगा नहीं, तो कर्म के अकर्म का देखना हुआ। और जो कोई नहीं सजाता है अपने घर को या अपने दुकान को और वो कर्म का न करना कर्म का अभाव हुआ, कर्म के न करने पर भी उसी को अपने दंड होता है। तो उसके बाद कर्म के न करने में भी उसके कर्म है तो आपने वो दंड नहीं समझा गया, उसके कर्म पहले बन गए। तो इस प्रकार से थी जो कर्म में अकर्म, अकर्म में जो कर्म देखता है वो मनुष्य के बीच के मां बुद्धिमान है। बोले बुद्धिमान है ये तो तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु यद ज्ञात वा मोक्ष से सुहात, जिसको जान करके तुम अशुभ जो संसार से मुक्त हो जाओगे वो इतने ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, इसलिए ये कहना ठीक नहीं। अब दूसरा पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष यह है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संचित है और एक क्रियमान और एक प्रारब्ध है। तो क्रियमान जो है उसका नाम तुलना कर्म है और प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध में क्रिया कोई होती नहीं भोग है, इस वास्ते वो है अकर्म। और नाना प्रकार के जो विविध जो कर्म है एक प्रकार से जिनको नाना प्रकार के जो संचित जो कर्म है नाना प्रकार के इकट्ठे किए हुए उनका नाम है तो विक्रम, विविध कर्मों का नाम विक्रम। तो कर्म अकर्म और विक्रम, तो कर्म में कर्म या पश्चिम चक्र में है या विक्रम को छोड़ करके कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसका निर्णय भगवान करते हुए कहते हैं। तो इस ज्ञान के बीच में कर्म क्या हुआ कि कर्म हुआ क्रियमान कर्म उसार से, और अकर्म क्या हुआ कि उसका फल जो है सो प्रारब्ध। तो जो आदमी प्रारब्ध के बीच के मां पुरुषार्थ को देखता है और पुरुषार्थ के मां प्रारब्ध को देखता है वही मनुष्य के मां बुद्धिमान है और वही योगी है, वह सब कर्म के करने वाला है। बोले पुरुषार्थ में प्रारब्ध कैसे और प्रारब्ध में पुरुषार्थ कैसे, कि कर्म करने के समय के बीच में इस बात का विचार करता है कि एक दिन ये तेरे लिए प्रारब्ध बनकर के आवेंगे, जैसा तुम कर्म करेगा ऐसा ही तेरे को फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म करने के समय के बीच के मां उसका क्या नतीजा होगा इस बात को समझ करके कर्म करता है, तो फिर पाप नहीं कर। तो ये कर्म के बीच के मां अकर्म का देखना है। और प्रारब्ध भोगने के समय में भोगना पड़ता है, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन मर गया, तो उस वर्ष में तो कुछ क्रिया तो होती नहीं, पटपट हो जाता है वो अकर्म। उसमें कर्म देखे कि तेरे किए कर्मों का यह फल तुम्हारी देता है। तो प्रारब्ध के समय के बीच में जो पहले जो कर्म किया उसको याद करता है कि तेरे कर्मों का दंड है, और करने के समय के बीच के मां सोच करके करता है कि तू यदि बुरा काम करेगा तो उसका दंड तेरे को भोगना पड़ेगा। तो उसके मां वो प्रारब्ध को पहले देख लेता है कि परिणाम को पहले देख करके कर्म करता है। तो कर्म के बीच में वो अकर्म को देखता है, अकर्म के मां वो कर्म को देखता है। तो बोले ठीक है, इस प्रकार का देखना बुद्धिमत्ता है और जरूर इसे लाभ उठाना चाहिए। ये बात बहुत शिक्षा की है, किंतु जगजात या मोक्ष से शुरुआत ये बात नहीं घटती कि जिसके जानने से मनुष्य मुक्त हो जाए इतनी ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। वो काम से बच सकता है और भोगने के समय में चिंता से बच सकता है, किंतु मुक्ति तो नहीं होती। तो फिर क्या इख्तियार करना चाहिए? तो अब एक तीसरा भाई और व्यक्त करता है, वो कहता है कि कर्म से समझे समझना चाहिए, शास्त्र रीत कर्म और ऐ कर्म से समझना चाहिए पाप कर्म। जो आदमी पुण्य से पाप को देखता है, पाप में पुण्य देखता है, वह मनुष्य के महाबुद्धिमान है। पुण्य से पाप और पाप में पुण्य, पुण्य में पाप कैसे और पाप में पुण्य कैसे, कि पुण्य करने के समय के बीच के ना जो मनुष्य समझ करके पुण्य नहीं करता तो उस पुण्य के मां पाप हो जाता है। ये कथा जो है एक प्रकार से महाभारत के कर्ण पर्व के बीच के मां आई है। और तो राजा युधिष्ठिर ने जो है, राजा युधिष्ठिर ने जिस समय के बीच के मां अपने चोट लगे थे और वे जाकर के एकांत में बैठ गए थे, अर्जुन उनके पास में गए और भगवान भी गए थे, तो उस समय के बीच में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। ये उपदेश दिया है कि एक सत्यवादी मुनि था, सत्यवादी मुनि जो सत्य बोलता था। एक दिन की बात है कि कितनी देश जो है धनी वे डाकुओं से चोरों से समझो कि डर करके भाग करके उस मुनि की कुटिया के पीछे में जो वन है उसमें रुक गए। थोड़ी देर के बाद वह चोर डाकू वहां आए, उन्होंने पूछा कि यहाँ जो धनी आए थे, धनी आदमी वे कहां गए, आप सत्य बोलने वाले हो, सत्यवादी हो तो सत्य बतलाओ। तो उस मुनि ने सच्ची बात कह ली कि हमारी कुटिया के पीछे वन है उसके मन रुके हुए हैं। चोर डाकुओं ने क्या किया कि जाकर के उनको जान से मार डाला और धन छीन लिया। तो उस सत्य बोलने के कारण से वो मुनि समझो कि नरक को गया। बात तो सच्ची बोली, तो सत्य बोलना तो धर्म है, पालन तो किया धर्म का, किंतु दूसरों का अनिष्ट हो गया, इस वास्ते वो अपने उस बात को नहीं समझा। इसका नतीजा क्या होगा, कारण के थी वो अपने पुण्य के मां पाप घट गया। तो हम लोगों को पुण्य कहीं पाप नहीं घट जाए, इस प्रकार से समझ करके पुण्य करना चाहिए। जो अपात्र को दान दे देता है, मनी जी कहते हैं कि जैसे पत्थर की नौका, समझो कि आपने उस नौका पर जो चढ़ते हैं उसके सही की वो डूब जाती है, ऐसे जो दाता जो है कुपात्र को दान दे देता है तो वो कुपात्र है उस अपने यजमान को लेकर के ही संसार सागर के मां अपने डुबो देता है। तो इसलिए कुपात्र को दान नहीं देना। तो ये समझो कि पुण्य के मां पाप को देखना कि पुण्य करते कहीं हमारे पाप नहीं हो जा रहे, और पाप में पुण्य कैसे, उसका उदाहरण दिया है। उसका यह उदाहरण दिया है कि एक बलात् नाम का हिंसक जानवरों को मारने वाला व्याध था। उस वन के बीच के मां एक ऐसा पशु रहता था, ब्रह्मा से वरदान पाकर के और उस वन के मां रहने वाले पशुओं को अधिकांश में उसने मार डाला था। और बलात् नाम का जो ज्यादा जो है उस पशु को मार डाला। उसके मारने से वहां के और बचे हुए जो पशु हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, हमारी जान बताई तुमने। तो उस पाप के फलस्वरूप के बीच में वो तृप्त हो गया। तो किया तो पाप ही फल हो रहा, उनको पुण्य का फल हो रहा। तो इस प्रकार से तुम समझना चाहिए कि पाप में तो पुण्य हो जाता है और पुण्य के मां पाप हो जाता है। इस बात के रहस्य को जो समझता है वो अपने बुद्धिमान